Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav, and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena.
Dhanyawad Vaibhav. Namaskar. Hum ek bar phir hazir hain Market Mantra ke taza ank ke saath. और आप सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। ध्यान रहे, दिल्ली से बाहर के श्रोता हमें एसटीडी कोड डायल करके कॉल करें, जो है 011 यानी 011। आज की खबरों पर चर्चा करने और आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी, बहुत धन्यवाद आपका।
जी, और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
एब्सोल्युटली स्पर्श, फर्स्ट द हेडलाइंस। फॉरेन इन्वेस्टर्स पंपिंग ओवर 9,000 करोड़ रुपीस इनटू द इंडियन डेट मार्केट सो फार इन अगस्त। डोमेस्टिक मार्केट्स टू टेक क्यूज फ्रॉम एफओएमसी मिनट्स, फेड चेयरमैन स्पीच एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा नेक्स्ट वीक। एंड ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस जंप नियरली 3% दिस वीक टू रिकॉर्ड हाइज।
विदेशी निवेशकों ने अगस्त में अब तक भारतीय ऋण बाजारों में किया 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश। एफओएमसी मिनट्स, फेड अध्यक्ष का भाषण और वैश्विक आर्थिक आंकड़े कर सकते हैं अगले सप्ताह घरेलू बाजारों का रुख तय। और वैश्विक सोने की कीमतें इस सप्ताह लगभग 3% की उछाल के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। और सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं आज की पहली खबर पर। विदेशी निवेशकों ने अगस्त महीने में अब तक भारतीय ऋण बाजारों में 9,112 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हालांकि एफपीआई ने इक्विटी बाजार से 21,201 करोड़ रुपए की निकासी की। यह निकासी भारतीय पूंजी बाजार में लगातार दो महीने के सकारात्मक निवेश के बाद की गई है। एफपीआई ने जुलाई के महीने में इक्विटी में 32,365 करोड़ रुपए और जून के महीने में 26,565 करोड़ रुपए का निवेश किया था। उससे पहले एफपीआई द्वारा मई में 25,586 करोड़ और अप्रैल में 8,700 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की गई थी। इस साल अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया जा चुका है। इक्विटी बाजार में अब तक 14,365 करोड़ और डेट में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं सुमित। सुमित जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्लीज सवाल पूछिए।
नमस्कार सर।
जी
सर, मैंने पिछले साल एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था करीब 7 से 8 साल के लिए। तो अभी मैंने एक साल बाद उसको रिव्यू किया तो मैं देख रहा हूँ एक साल में उसमें करीब 50% का रिटर्न मिल रहा है। तो सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी क्या सलाह है कि मैं अभी उसमें बना रहा हूँ 7-8 साल तक, उसी में कंटिन्यू करूँ, या जो ये मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर तो 50% मिल रहा है, 50% को मैं निकाल के किसी और फंड में ट्रांसफर कर दूँ 7-8 साल के लिए, तो उसमें मेरे को ज्यादा मुनाफा होगा कि इसमें बने रहने में ज्यादा मुनाफा होगा, ये करना है।
जी समित जी, तो मेरा जवाब ये रहेगा कि अगर आप 7-8 साल का एक टाइम होराइजन लेके चले थे, अगर आपको इस पैसे की हाल फिलहाल में नियर टर्म में कोई जरूरत नहीं है तो आप बिल्कुल बने रहिए। देखिए, मार्केट बहुत अच्छी चली है इस दौरान और सारे ही फंड्स ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन ये कोई एक अपने आप में शायद एक रीजन नहीं है कि आप मार्केट से पैसा निकालें। अगर आपको 1-1.5 साल में कुछ पैसे की जरूरत है तो मार्केट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको रिडीम, अपने प्रॉफिट्स बुक करने का, और जिस उद्देश्य से आप ये पैसा सेव कर रहे थे उसको अचीव करने का। लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है इसमें बने रहें, क्योंकि कंपाउंडिंग का लाभ आपको तभी होगा अगर आपने जितना कमाया है उतना आप निकाल लेंगे, तो जो कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है इक्विटी निवेश में, उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो पैसा निकालिए मत, बने रहिए।
Absolutely. Usually, Ashutosh, we see that during a green patch in the market, we have expectations which are too high or which are way beyond the realities. How would you give a reality check, especially to the new investors, to the retail investors, because that's what we saw in the market that happened, especially with the budget as well, that they did not want, the government did not want too many traders trading on a daily basis. They wanted people to take a cautious step and then learn how and things are moving on. What would you say to them?
No, certainly that's an important dimension, and particularly important for the new investors, as you rightly said, because the way the markets have been in the last 2-3 years, people have very extraordinary return expectations built into their investing. We often come across people, in conversations where people don't think very highly about even achieving 14-15% annualized rate of return, and because that has been the experience of investors in the last 2-3 years. But I think these expectations are not very sustainable in the long term. The realistic expectations would be that in the long term, one should assume that the markets or the performance of equity markets should mirror the economic growth. So if we say that Indian economy, in the nominal terms would grow by, let's say, 11-12%, so that should be your long-term return expectation. Anything beyond that, consider that as your bonus. So while you're doing your goal planning, while you are trying to understand how much money you should be saving to achieve a certain target sometime down the line, don't estimate or expect more than 11.5-12% and feel happy if you overachieve that.
Absolutely. So we should not be moved by monumental figures of CAGRs and not be attracted by that.
Bilkul. और हमारे साथ कालकटा से जुड़ चुके हैं के सहगल। सहगल साहब, सवाल पूछिए अपना।
हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हेलो
जी, नमस्कार।
नमस्कार जी, हेलो
जी। सहगल जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, अपना सवाल पूछें।
आर यू लिसनिंग?
जी, वी आर लिसनिंग सर। वेलकम टू द शो मार्केट मंथ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
वी वांट टू इन्वेस्ट समथिंग। हेलो।
यस सर, यू ऑडिबल।
वी वांट टू इन्वेस्ट इन सम म्यूचुअल फंड एंड सम कंपनीज आर अप्रोचिंग अस थ्रू देयर सेल्स पीपल दैट यू डील थ्रू अस। नाउ हाउ डू वी एसर्टेन वेदर दे आर द ऑथराइज्ड agents for mutual funds or not? Can you guide me, please?
Okay. Sir, what I would suggest is that you can invest even directly through the websites of the mutual funds. So these days investing is very convenient. If you have any doubts about their whereabouts, you can invest through your bank. You can invest the bank where you have your bank account, or you can invest even directly. These days there are a lot of investment platforms which make investing very convenient. You can even go directly to the website of a mutual fund and start investing. Just to allay some of your concerns, see, mutual funds by design are a fairly safe vehicle. The money that you pay, you do not pay in the name of an individual. The amount that you would pay either by check or even electronically directly goes into the specific scheme in which you're investing, and the money can only come back in your bank account, from which you've made the payment. There are no exceptions to that. So by design, mutual funds are a safe and a transparent and a well-regulated vehicle. But if you have apprehensions about who is approaching you, then look for online channels which are very trustworthy.
And in the meanwhile, we also have a caller from Jaipur calling in. We have Jitendra ji. Jitendra ji, swagat hai aapka market manch mein. Please apna sawal poochhe.
Hello.
Jitendra ji.
Sawal poochhe.
Ji sir, swagat hai aapka show mein. Please apna sawal poochhe.
अच्छा सर, जैसे मैंने एक कोटक का डेब्ट फंड लिया था, तो उस फॉर्म पे मैंने डीमेट अकाउंट लिख दिया था, तो वो डीमेट अकाउंट में हमारे चला गया है, ठीक है। अब वो उसका म्यूचुअल फंड से कोई ये नहीं है, तो एनएसडीएल का जो स्टेटमेंट मंथली आता है उसमें तो शो करता है, लेकिन हमारा जहां डीमेट अकाउंट जिस ब्रोकर के पास है उसके क्या नाम है, उसके लिस्ट में जो उसका एप्स है उसके में शो नहीं करता है। मैंने अभी कहीं बात नहीं की है, तो ऐसा क्या मतलब हो सकता है?
देखिए, म्यूचुअल फंड आप दो प्रकार से होल्ड कर सकते हैं, एक होता है डीमैट होल्डिंग, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और एसओए होल्डिंग। तो जो ज्यादा प्रचलित है, जो एक कन्वेंशनल मोड ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स है, वो एसओए फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसमें आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के नाम चेक देते हैं और आपका पैसा निवेश हो जाता है और उसके अगेंस्ट आपको यूनिट्स मिल जाती हैं। ये आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे लॉग इन करके भी अपनी यूनिट होल्डिंग देख सकते हैं। अगर आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदा है, उन्होंने आपको कोई ऑनलाइन यू नो मैकेनिज्म दिया है, आप वहां ट्रैक कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली एक कैम्स या केफिन टैक्स से स्टेटमेंट अपनी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें यूनिट्स शो करेंगी। डीमैट होल्डिंग्स एक रिलेटिवली नया तरीका है होल्ड करने का। ये उन लोगों के लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है जो अदरवाइज स्टॉक्स में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका ऑलरेडी अगर एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है तो वो सारी उनकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स एक ही डीमैट अकाउंट में एक साथ दिख जाती हैं, तो उनके लिए शायद ये थोड़ा कन्वीनियंट मोड हो सकता है। बट जनरली मेरी राय में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मोड ज्यादा कन्वीनियंट मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स के लिए, मेरी राय में ज्यादा कन्वीनियंट और ज्यादा इजी टू ट्रैक मेथड है। तो आप ये सोच सकते हैं कि आप डीमैट वाली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल ऑफ करके आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में डायरेक्ट होल्डिंग अपनी बना लें और आगे का निवेश एसओए फॉर्मेट में ही करें।
जी, और कोलकाता का रुख कर लेते हैं। कोलकाता से हमारे साथ अतानु शाह जुड़े हुए हैं। अतानु जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्लीज सवाल पूछिए।
गुड इवनिंग सर, माय क्वेश्चन इज हाउ डू वी कैलकुलेट कंपाउंडिंग एंड माय क्वेश्चन इज आवर पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज इट ए म्यूचुअल इंटीमेट फंड इटसेल्फ? थैंक यू सर।
वेल, कंपाउंडिंग स्ट्रिक्टली यू नो इन अ वेरी प्योर फॉर्म अप्लाइज व्हेन यू हैव यू नो रेगुलर पेमेंट्स एंड फिक्स्ड अमाउंट पेमेंट्स एंड विच कीप एक्यूमुलेटिंग। सो यू नो फॉर इंस्टेंस इफ यू इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड यू नो वेर यू गेट ऑल द प्रोसीड्स एट द मेच्योरिटी, सो यू नो लेट्स से यू इन्वेस्ट 100 रुपीज एंड यू गेट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो यू नो योर 100 रुपीज बिकम्स 110 एंड द नेक्स्ट ईयर यू गेट अगेन 10% बट नॉट ऑन 100, यू गेट ऑन 110। सो यू नो दिस वे कंपाउंडिंग वर्क्स दैट योर इंटरेस्ट इटसेल्फ अर्न्स इंटरेस्ट एंड यू नो ओवर अ लॉन्ग टर्म इट हैज काइंड ऑफ अ स्नोबॉलिंग इनफैक्ट वेयर योर एनुअल इनकम यू नो और एनुअल प्रॉफिट्स कीप राइजिंग। सो इन दैट प्योरेस्ट फॉर्म इट डज नॉट अप्लाई टू इक्विटी बिकॉज इक्विटी डज नॉट गो अप इन अ लीनियर फैशन, बट ओवर अ लॉन्ग टर्म यू नो योर मनी ग्रोज, यू नो यू गेट 8-10% रिटर्न्स इन एन ईयर, देन नेक्स्ट ईयर द मार्केट गोज अप अगेन, सो यू नो योर यू वुड अर्न द एक्स्ट्रा रिटर्न्स ऑन द कंप्लीट एक्यूमुलेशन योर प्रिंसिपल बट द रिटर्न्स दैट यू हैव अर्नड इन द पास्ट। Of course, you know, there would be intermittent periods and the markets would fall and, you know, you would also incur negative returns. But over a period of time, the compounding does work and does work to your advantage, even in equity investing. I'm afraid I did not get your second question about PPF very well. So maybe you can call back again and try to explain it a little bit more.
And from Kolkata, let's move over to Mumbai, where we have our next caller from. We have Sanjay Ji calling in. Sanjay, welcome to the show. Please ask your question.
Namaskar, sir.
Namaskar.
Sir, SBI SWP plan ke baare mein bataiye, aur sabse acha plan kaun tha isme SWP mein? Thank you.
देखिए, एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक मार्केट से पैसा निकालने का तरीका होता है, ये किसी फंड का नाम नहीं है। तो आप हमें दोबारा कॉल करके एसबीआई का कौन सा स्पेसिफिक फंड है आप उसकी जानकारी हमें दीजिएगा, तो शायद हम आपको थोड़ा उसके बारे में अपनी राय बता पाएंगे। एसडब्ल्यूपी एक मार्केट से पैसा निकालने का तरीका है और ये काफी अच्छा तरीका है मार्केट से पैसा निकालने का। जैसे आपको हमेशा बोला जाता है कि जब आपको मार्केट में निवेश करना है तो आप एसआईपी के जरिए निवेश करिए, जैसे कि आप मासिक एक ईएमआई की तरह एक मासिक इंस्टॉलमेंट आप बना लीजिए और हर महीने आप मार्केट में लगातार निवेश करिए। जब आपको पैसा रिडीम करना हो मार्केट से, उसमें भी आमतौर पर यह अच्छा माना जाता है कि आप एक बार में किसी एक टाइम में लमसम में मार्केट से पैसा ना निकालकर एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए मार्केट से पैसा निकालें। अगर मानिए आपको एक डेढ़ साल बाद कुछ पैसे की जरूरत है, कोई आपको डाउन पेमेंट करनी है या किसी भी जरूरत के लिए आपको एक पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप एक डेढ़ साल वो एक्चुअल टाइम आने का इंतजार मत करिए, क्योंकि पता नहीं मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होती है। जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी अगर उस वक्त मार्केट धड़ाम से गिर जाए तो ये आपके लिए चिंता का विषय बन जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा ये राय दी जाती है कि आप समय से पहले से ही एक करीब एक डेढ़ साल पहले से धीरे धीरे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसा निकालना शुरू कर दीजिए मार्केट से, उसे एसडब्ल्यूपी बोलते हैं। किसी भी इक्विटी निवेश में से अगर आपको प्लान्ड वे में एग्जिट करना हो तो आप एसडब्ल्यूपी का यूज करिए और एक किसी भी फंड पे कारगर साबित होगा।
जी, और मुंबई के बाद अब हम राजधानी की ओर चलते हैं। दिल्ली से हमारे साथ नितिन कुमार जुड़े हैं। नितिन जी, स्वागत है आपका शो में, प्लीज क्वेश्चन पूछिए अपना।
नमस्कार सर।
जी
सर, ये हमें म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए, म्यूचुअल फंड में किस तरह से पैसा लगाया जाता है, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ अभी रकम है तो लमसम सस्ता है तो एक साथ तो नहीं लगा सकते, तो हमें इसमें इन्वेस्ट करना है तो बैंक में ही रहने दें कि आपके म्यूचुअल फंड में किस ढंग से ये काम होता है, किस तरीके से काम करा जाएगा, इसके बारे में बताएंगे।
देखिए, मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ। आप बिल्कुल, अगर आपके पास पांच सात साल या उससे ज्यादा का समय है इस निवेश के लिए, तो आपको जरूर म्यूचुअल फंड्स में रखना निवेश करना चाहिए। अगर आपको एक डेढ़ साल बाद इस पैसे की जरूरत पड़नी चाहिए तो आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि उसमें फिर काफी जोखिम आपको उठाना पड़ सकता है। लेकिन पांच सात साल या उससे ज्यादा तक आप ये पैसे को निवेशित रख सकते हैं तो आप जरूर म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखिए। आप एक आपकी बातों से मैं अंदाजा कर पा रहा हूं कि आपने कभी पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो मेरी सलाह ये होगी एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं उसमें आप अपना पैसा डाल सकते हैं। ये फंड करीब आपका 70-75% पैसा इक्विटी में निवेश करते हैं और 25-30% पैसा डेट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। आप अपने बैंक के थ्रू ही फंड्स में निवेश कर सकते हैं। मैं आपको एक दो फंड के नाम बताता हूं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, मिराय एसेट इक्विटी हाइब्रिड फंड, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। आप इनमें से कोई दो फंड ले लीजिए, उनमें आप एक मासिक इन्वेस्टमेंट बनाइए अपने बैंक, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, सारे बैंक्स आपको म्यूचुअल फंड निवेश की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप किन्हीं दो फंड इनमें से लीजिए, 12 महीने में अपने पैसे को स्प्रेड करके आप एक एसआईपी बना लीजिए और इस पैसे को लगाइए। आपको बैंक से ही आपको स्टेटमेंट मिलती जाएगी, आपको पता चलता जाएगा लगातार कि आपके पैसे की वैल्यू कितनी है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कहां पे जा रहा है। मार्केट अगर गिरे तो घबराइए नहीं, अपनी निवेश पर बने रहिए, क्योंकि आप पांच सात साल का होराइजन लेके चल रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि जब मार्केट गिरती है अक्सर नए निवेशक जो होते हैं वो घबराकर पैसा निकाल लेते हैं, लॉस बुक करते हैं और फिर कभी वापस आकर इन्वेस्ट नहीं करते, तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस उनके लिए हो जाता है। आपको टिके रहना है और इसीलिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड आपके लिए थोड़े मददगार होंगे, क्योंकि जब मार्केट गिरेगी इनमें डेट कॉम्पोनेंट होने की वजह से थोड़ा कम गिरते हैं, तो आप ये निवेश करिए और आपको होपफुली प्रॉफिटेबल साबित होगा।
And we have a next caller from Indore, Mr. Anil. Welcome to the show, Anil. Please ask your question.
Anil Gaudale, Indore se baat kar raha hu. Market ban gaya ke teri ko rakhi ke bahut sari shubhkamnaen.
Ji, aapko bhi
dhanyawad. Apna sawal puche.
Sir, hamara sawal ye hai, hum 2025 mein retire ho jayenge aur us samay humko 15 se 20 lakh rupaye dekhenge. To humko ye paisa kahan pe invest karna chahiye? 15 lakh rupaye humko
जी देखिए, ये इसके लिए थोड़ी और जानकारी की जरूरत पड़ेगी, आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, कैसा निवेश करना चाहिए, ये एक ये बहुत सारे चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने बताया, अगर मैं ठीक से सुन पाया, थोड़ी आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, आपने शायद बताया कि अगले साल आप रिटायर होने वाले हैं और आपको 15-20 लाख रुपए की धनराशि मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप इस पैसे पर निर्भर होंगे पोस्ट रिटायरमेंट रेगुलर इनकम के लिए, या ये पैसा आपकी जो रेगुलर इनकम की नीड्स हैं वो टेकन केयर ऑफ हैं और ये पैसा सिर्फ आपको निवेश करना है, एक आपके पास ये सरप्लस पैसा है। अगर आपको इस पैसे से रेगुलर इनकम की जरूरत है, आप इस पर निर्भर करेंगे पोस्ट रिटायरमेंट, तो इस पैसे को निवेश करने के तरीके दूसरे होंगे। आपको उसमें से उस सूरत में आपको करीब 25-30% पैसा इक्विटी में और बाकी करीब 65-70% अपना पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हैं आप उनमें निवेश करिए। लेकिन अगर आप इस पैसे पर निर्भर नहीं करेंगे, यह एक तरह का आपका सरप्लस इन्वेस्टमेंट है जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही मान के चल सकते हैं, तो आप थोड़ा इक्विटी डोमिनेंट निवेश कर सकते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की तरफ आप देख सकते हैं। तो थोड़ा पहले ये इस पर विचार करिए कि इस पैसे की आपको किस तरह से जरूरत पड़ने वाली है, अकॉर्डिंगली आपको निवेश करना चाहिए।
जी, और हमारे साथ दिल्ली से महेश जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए प्लीज अपना।
गुड इवनिंग, सर, मेरा क्वेश्चन है कि अभी वित्तीय जो गोल्ड का जो इम्पोर्ट ड्यूटी का जो भी चेंजेस किया है, सो इज इट एक्चुअली राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दी गोल्ड ईटीएफ फॉर गोल्ड फंड्स ऑफ द म्यूचुअल फंड एंड द गोल्ड देन एक्चुअली ट्रेडिशनल आई थिंक 10% ऑफ यूर टोटल दिस थिंग इज एक्सपोज टू गोल्ड सो डू वी नीड टू इंक्रीज इट ऑल्सो.
Alright. See, first of all, I would suggest that don't base your decision to invest in gold or for that matter any other asset class based on, any changes in its tax structure or duty structure. Every asset class has a place in the portfolio because of what is the investing need it fulfills and which is dependent upon, what is the investment objective you are pursuing. Generally speaking, we don't think very highly of gold as an investment avenue. Because gold is generally an unproductive asset class. You know, when you invest in gold, it just sits, in your locker or in a bank's vault somewhere, and it does not produce anything. That's why, we don't think very highly of gold as an investment. But over the long term, several analyses have revealed that gold tends to perform well when the equity markets are falling. So gold that way works as a store of value. It works as a good hedge against equity. So if you are a kind of investor who really gets worried when the equity markets are falling, and to safeguard yourself a little bit, you would want some investment somewhere which would bring some mental peace to you, then gold can make sense in your portfolio. And I believe 10-15% allocation, as you said, as a thumb rule really can be good enough. So if you already have that, then I don't think there's a need to add to it. But certainly don't be guided by any changes in the taxation or the budget, to base your long-term investing decisions.
We have a next caller from Delhi, Mr. Rajendra. Rajendra ji, swagat hai aapka Market Month mein. Apna sawal poochhein.
Namaste.
नमस्कार
जी. का क्वेश्चन है, ये एक सवाल का जवाब दिया आपने. मेरी कुछ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग डीमैट अकाउंट में है. डीमैट से रिडम्पशन काफी मुश्किल है. कोई तरीका है कि ये होल्डिंग नॉर्मल म्यूचुअल फंड के पास ट्रांसफर की जा सके? मैं डीमैट से निकाल के बेचना, उसे रिडम करके नहीं करना चाहता. डायरेक्ट कोई तरीका है?
देखिए, माफ कीजिएगा, इसके बारे में आप अगले सप्ताह में दोबारा फोन करिए. मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हम इस पर थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे. डीमैट होल्डिंग, इसीलिए मैंने जैसे पहले बताया कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होल्डिंग फॉर्मैट इज अ मच मोर कन्वीनियंट एंड अ मच मोर इजी टू ऑपरेट फॉर्मैट मेजोरिटी इन्वेस्टर्स के लिए. डीमैट की आप इन्वेस्टमेंट्स अपने ब्रोकिंग अकाउंट के जरिए ही रिडीम कर सकते हैं. लेकिन आप इस सवाल को लेकर आप हमें दोबारा हमारे साथ जुड़िए अगले सप्ताह. इस पर हम और थोड़ा सा डिटेल में जानकारी प्राप्त करके आपका जवाब दे पाएंगे.
जी आशुतोष जी, हमारे कई कॉलर्स ने भी कॉल करके पूछा, और लॉन्ग टर्म ये शब्द जो है कई बार हम सुन चुके हैं. अब तो मेरा सवाल आपसे, ये दो सवाल है एक्चुअली. म्यूचुअल फंड इज अ लॉन्ग टर्म गेम, ये काफी चलन में रहती है ये बात. तो क्या कितनी ये बात सही है या गलत है, या और साथ में कि लंबी अवधि में जो लोग निवेश करना चाह रहे हैं 10 से 15 साल में, तो बेस्ट उनके लिए कौन से फंड्स रहेंगे? डेट फंड्स या फिर इक्विटी फंड्स की तरफ जाना चाहिए उनको? वो किस प्रकार से उनको आगे बढ़ना चाहिए, स्पेशली एक एज ब्रैकेट अगर हम लेके चले 30 से 40 का?
जी, तो पहला आपका सवाल था कि ये लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स. देखिए, जरूर लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स काफी कारगर साबित हुए हैं इंडियन इकोनॉमी में क्या कहीं भी, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव शॉर्ट टर्म में काफी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. लेकिन अगर आप मानिए सेंसेक्स जैसे है मार्केट्स, अगर रोज आपको मार्केट्स नहीं दिखती, अगर आप मार्केट्स को 5 साल में एक बार देखेंगे, तो मेरे ख्याल कभी भी आपके लिए वो डिसअपॉइंटिंग एक डिसअपॉइंटमेंट का रीजन नहीं होगा. आमतौर पर देखा गया है कि एक जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए एक नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव पीपीएफ काफी पॉपुलर इन्वेस्टिंग मेथड है. पीपीएफ 15 साल का अकाउंट होता है, और पीपीएफ का जो म्यूचुअल फंड काउंटर पार्ट है वो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स ईएलएसएस फंड्स, जो कि एटीसी में आपको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं. तो अगर आप 15 साल के रिटर्न पे देखें, तो जो पीपीएफ के रिटर्न्स हैं, इवन द वेरी पुअर परफॉर्मिंग ईएलएसएस स्कीम्स आर एबल टू बीट पीपीएफ इन अ 15 ईयर टाइम होराइजन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेक्टिविटी, और इफ समबडी डज नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स बिकॉज ऑफ वरिंग अबाउट कि कौन सा फंड अच्छा है कौन सा फंड खराब है, तो अगर कोई ईएलएसएस के खराब फंड में भी अनलकी होता, 15 साल पहले खराब फंड में भी इन्वेस्ट किया होता, तो भी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव पीपीएफ से शायद ज्यादा ही पैसे कमा लिया होता.
जी.
तो लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स जरूर कारगर साबित होते हैं।
ईएलएसएस की भी अगर आपने बात करी तो ईएलएसएस पे मैं जानना चाहूंगा आपसे, कई लोगों का क्या है कि स्पेशली जो सैलरीड क्लास है वो ईएलएसएस की तरफ ज्यादा प्रभावित मैंने देखे, तो वो इसमें एक चीज ये क्लियर करिए कि जो लॉक इन पीरियड है, कई लोगों को लगता है आज हम पैसा लगाएंगे 3 साल बाद उसको निकाल लेंगे, बट वो पहली एसआईपी पे 3 साल पूरे होंगे या ओवरऑल लोगों के माइंड में यह रहता है कि हम ओवरऑल पैसा जो है 3 साल बाद निकाल सकते हैं।
आशुतोष, आई वुड ऐड दीज क्वेश्चंस दैट ईएलएसएस स्कीम्स एज यू जस्ट सेड आर अ बेटर वे और अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इन्वेस्टिंग एट अ बेटर रिटर्न बट जस्ट लाइक पीपीएफ, सो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ आर इन्वेस्टर्स बिकॉज देयर आर मेनी इन्वेस्टर्स ऑफ द कंट्री हु एक्चुअली वांट टू लर्न अबाउट इट, सो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन अ पीपीएफ स्कीम एज इफ द इंटरेस्ट इज फ्री और द मैच्योरिटी अमाउंट इज फ्री फ्रॉम टैक्स, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट एज वेल अलॉन्ग विद स्पर्श's क्वेश्चन।
Sure. So to answer to you, Sparsh, what you said is right, that every installment would need to complete 3 years tenure. So if you are doing an SIP in ELSS, so the start date of your SIP does not matter. What matters is that when that money got invested.
Mm-hmm.
So every month, you know, one of your installments will be completing 3 years. So every investment should complete three years. And only after that you can redeem. So that's one. Now coming to the next question about the similarities. Well, you know, they are poles apart in the way that, you know, they are not comparable. PPF is your fixed income investing, you know, comes with you know, defined returns, predictable returns. You know, there is no unpredictability. There is also no risk. It's a completely risk-free investment. You know, it comes with a sovereign guarantee in a way. On the other you know, end of the spectrum, equity linked savings schemes, as the name suggests, invest all your money in equity markets, you know, which are highly volatile. You know, there is no return predictability, but yes, over a long term they prove to be fairly rewarding, but you'll have to you know, tolerate the ups and downs that come with equity investing. The similarities in terms of, you know, the taxation, both of them fetch you benefits under section 80C. And at this point in time, you know, about that's what is similar about both of them.
And now moving on to our stories in this edition of Market Mantra. First, about the markets next week. Domestic markets will keep a keen eye on FOMC minutes, FedChair speech in Jackson Hole, and global economic data FAQs next week. The market sentiment revived last week as the benchmark indices snapped a 2-week losing streak due to a bounce back on Friday on positive global cues, with the easing U.S. recessionary concerns, rising hope for a U.S. Fed fund rate cut in September, and stability in the Japanese yen lifted sentiment. Next week, all eyes will be on the FOMC minutes and speech by the U.S. Fed Chair Jerome Powell at the 3-day Jackson Hole Economic Symposium hosted by the Kansas City branch of the Federal Reserve on August the 23rd. Apart from FOMC minutes and Powell's speech, the weekly jobs data and new home sales data from the U.S. and inflation prices from Europe and Japan will. In addition, the participants will also watch the manufacturing and services PMI flash numbers for August for several key economies. And moving over to the gold story, global gold prices jumped nearly 3% this week after scoring to an all-time high on Friday as the dollar weakened on growing expectations for an interest rate cut from the Federal Reserve in September, and as tensions in the Middle East bolstered demand for bullion. Gold gained 2.8% this week to end at $2,498.72 per ounce after hitting a record high of $2,500.99. The dollar index fell 0.4% and posted a fourth week of losses, making gold more appealing for buyers overseas.
जी, और धन्यवाद आशुतोष जी, आपने कार्यक्रम में आपने भाग लिया और मार्केट मंत्र में आने के लिए आपका धन्यवाद, और श्रोताओं का भी धन्यवाद। और अब चलते चलते नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पे एक बार फिर, जिसके साथ हैं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
एब्सोल्युटली स्पर्श, बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। फॉरेन इन्वेस्टर्स पंप इन ओवर 9,000 करोड़ रुपीज इनटू द इंडियन डेट मार्केट सो फार इन ऑगस्ट। Domestic markets to take cues from FOMC minutes, Fed Chairman's speech, and global economic data next week. And global gold prices jumped nearly 3% this week to record highs. And that's it in this edition of Market Mantra. Market Mantra.